फिलहाल वंशिका बोली थी, आकाश भैया परेशान मत होइए, और वैसे भी अभी रश्मि दीदी का पूरा वक्त चल रहा है और पता नहीं वो कब खुशखबरी भी दे दे। बस अब से आपको हर समय उनके आसपास ही रहना होगा, उनका बहुत ख्याल रखना होगा। मैं तब तक जाकर कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती हूँ जो उन्हें एनर्जी देगा। और हाँ, सबसे पहले तो आप तब तक उन्हें नारियल पानी पिला दीजिए, मैं अभी भिजवाती हूँ, फिर कुछ हेल्दी बनाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वंशिका हल्की मुस्कुराहट के साथ वहां से नीचे आ गई थी। भैया, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप आवाज लगा दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये सुनकर ध्रुव भी हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से बाहर आ गया था। वहीं आकाश ने एक नजर रश्मि को देखा और तुरंत उसका हाथ थामकर उसके पास बैठ गया। रश्मि को काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। हल्के हल्के उसने अपनी आंखें खोली और आकाश को देखने लगी। तभी आकाश ने चिंतित होकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है? तब रश्मि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों परेशान होते हो? ये बोलकर रश्मि ने जबरदस्ती अपने होठों पर एक मुस्कान सजा ली। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद अरमान तैयार होकर अंश को लेकर नीचे आ गया था। नानीमा इस वक्त कुछ परेशान सी हॉल में बैठी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मनोज जी ने प्रियंका को गले लगाया था, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। वो कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन उनकी जबान उनका साथ नहीं दे रही थी। नानीमा उसी बात को लेकर परेशान थी और बार बार नजरें आस्था की तरफ जा रही थी। आस्था ने आते ही पूछा, मामा, मामी और प्रियंका दीदी कहाँ है? मैं अभी जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। तभी नानीमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, नहीं बेटा, हम अभी उनके पास से ही आए हैं, इस वक्त हम तीनों को थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। और मनोज अब बिल्कुल ठीक है, वो कोई उल्टी सीधी बातें भी नहीं कर रहा है, तुम परेशान मत हो। अभी तुम आई हो, थोड़ी देर बैठो और रिलैक्स करो। जैसे ही नानीमा ने ये कहा, आस्था हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखने लगी। फिर बोली, रश्मि दीदी क्यों नहीं आई? क्योंकि रश्मि दीदी तो सुबह सुबह ही सबके साथ नीचे आ जाती हैं। तभी वंशिका, जो रश्मि के लिए हेल्दी नाश्ता लेकर ऊपर जा रही थी, तुरंत वहां आई और बोली, वो रश्मि दीदी आज थोड़ा ज्यादा वीकनेस महसूस कर रही हैं, इसलिए मैं उनके लिए नाश्ता कमरे में ही लेकर जा रही हूँ, राधिका दीदी भी अभी उनके साथ ही हैं। ये सुनकर आस्था थोड़ा सा चौंक गई और सोचने लगी, इस टाइम पर इतनी कमजोरी आना ठीक नहीं है। तभी नानीमा भी चौंकते हुए बोली, ये क्या कहा बेटा तुमने, रश्मि बेटी को कमजोरी महसूस हो रही है? लेकिन क्यों, मैंने तो खुद अपने हाथों से उसके लिए देसी लड्डू बनाकर खिलाए हैं जो प्रेगनेंसी के वक्त ताकत देते हैं, तो ऐसे में कमजोरी का सवाल ही नहीं उठता। तुम ठहरो, मैं चलती हूँ रश्मि के पास। तभी वंशिका बोली, नानीमा घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी चेकअप कर आई हूँ, रश्मि दीदी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा वीकनेस है, आप तो जानती हैं ऐसा हो जाता है। लेकिन नानीमा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम ठहरो, मैं चलती हूँ। आस्था एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल और अंश को रौनक को दे दे। तभी आहान उबासी लेते हुए वहां आया और नानीमा के गले से लिपट गया। क्या हुआ नानीमा, आप अंश को रौनक को देने की बात कर रही हैं? वो तो घोड़े बेचकर सो रही है, और पता नहीं हमारी प्रिंसेस को क्या हो जाता है, दिन भर खेलती रहती है और जैसे ही हम रात को सोने जाते हैं वो उठकर रोना शुरू कर देती है। नानीमा, कितनी मुश्किल से हमने उसे सुलाया है, आप सोच भी नहीं सकती, और अभी रौनक उसे लेकर ही सोई हुई है। ये सुनकर नानीमा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा छोटे बच्चे हैं और बच्चे ऐसे ही करते हैं, तुम फिक्र मत करो, बस कुछ दिन की बात है, फिर उसका सोने जागने का टाइम टेबल ठीक हो जाएगा। फिर बोली, फिलहाल तुम एक काम करो, हम अभी आते हैं, तब तक तुम अंजपिता को संभालो। अब नानीमा और आस्था को जल्दी जल्दी जाते हुए देखकर आहान ने पूछा, आखिरकार अरमान भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वहीं अरमान बोला, हो सकता है नानीमा को कुछ याद आ गया हो, शायद इसलिए वो रश्मि के कमरे में जा रही हैं। तब तक सुमित और ध्रुव भी आकर हॉल में बैठ गए थे और लगभग सारी लड़कियां रौनक को छोड़कर अब रश्मि के कमरे में इकट्ठा होने लगी थीं, क्योंकि नानीमा आस्था को हड़बड़ी में रश्मि के कमरे में जाते हुए देखकर सभी को अजीब लगा था। और वैसे भी वंशिका तो रश्मि के लिए खाना लेकर जा रही थी, उसके पीछे पीछे राधिका भी आस्था और नानीमा के साथ साथ जाने लगी थी। तब तक आकाश सबके साथ नीचे आकर हॉल में बैठ गया था। वहीं आहान आकाश को देखकर बोला था, आकाश भाई आप यहाँ आकर बैठे हैं, रश्मि भाभी तो ठीक है ना? क्योंकि नानीमा काफी अजीब सा बिहेव कर रही थी और थोड़ा जल्दी जल्दी कमरे में गई हैं, और आप तो जानते हैं नानीमा बहुत धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन आज तो वो बहुत तेजी से आपके कमरे में गई हैं, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? आहान की फिक्र देखकर आकाश ने जल्दी से जवाब दिया था, अरे नहीं नहीं, वो रश्मि दीदी अभी सो रही हैं, थोड़ी वीकनेस है उनको, शायद वही देखने के लिए नानीमा गई होंगी। वहीं आकाश हल्का सा मायूस होकर बोला था, पता नहीं यार क्या हुआ है, वैसे तो सब ठीक है लेकिन वो बड़ी अजीब लग रही हैं, उनका चेहरा भी पीला लग रहा था, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, हो सकता है कि प्रेगनेंसी का ही कोई इफेक्ट हो। जैसे ही आकाश ने अपनी चिंता जाहिर की, सुमित ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख दिया था और बोला था, तो फिक्र मत कर, सब ठीक होगा, वैसे भी नानीमा है वो संभाल लेंगी। वहीं उसी वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अंश आहान की गोद में होने के बावजूद अरमान की गोद में आने की जिद कर रहा था। आहान अंश को देखकर बोला था, चैंप, प्लीज थोड़ी देर मुझसे बातें कर ले, मेरे पास सोना भी छोड़ दिया है तूने। आहन बच्चों की तरह अंश से बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंश उसकी हर बात का जवाब देगा। यही सोचकर सब हल्का सा मुस्कुरा दिए और अरमान फिर से अपने लैपटॉप पर अपने काम में बिजी हो गया था। लेकिन सभी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। जैसे ही सबने अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर अब पहले जैसा कड़वापन या कोई भी जुनून नजर नहीं आ रहा था। ये बात उनके लिए काफी थी। फिलहाल आकाश ने भी हल्का सा मुस्कुराकर सबके साथ बातें करना शुरू कर दिया था। अब नानी माँ भी जल्दी ही रश्मि के पास पहुंच गई थी। रश्मि ने नानी माँ को देखकर थोड़ा सा उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन नानी माँ ने उसे इशारे से मना कर दिया और अपनी पैनी नजरों से रश्मि के शरीर को देखने लगी। तभी नानी माँ रश्मि को देखकर बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हें कमजोरी महसूस क्यों हो रही है, कुछ बात है क्या? तभी जल्दी से रश्मि बोली, नानी माँ परेशान मत होइए, आप तो जानती हैं मैं खुद डॉक्टर हूँ और इस सिचुएशन में कभी वीकनेस और परेशानी तो लगी ही रहती है। वैसे भी जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम तो होगी ही। तब नानी माँ बोली, बेटा हम जानते हैं ये सब, लेकिन फिर भी कुछ है जो हमें ठीक नहीं लग रहा है, एक मिनट रुको। ये बोलकर नानी माँ ने राधिका और वंशिका को बेड से हटने का इशारा किया और आस्था को देखकर बोली, आस्था जरा मदद करो, रश्मि के दोनों पैर बिल्कुल सीधे करो। अब ये देखकर राधिका और वंशिका हैरानी से नानी माँ को देखने लगी कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तभी नानी माँ ने धीरे से रश्मि के पेट को छुआ और बहुत ही सावधानी से अपनी उंगलियां उसके पेट पर चलाने लगी। अचानक ही नानी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नानी माँ तुरंत तेज आवाज में बोली, हमें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल चलना होगा।
जैसे ही नानी माँ ने ये कहा रश्मि हैरानी से बोली, लेकिन नानी माँ क्या हुआ है, सब ठीक है ना, आप अचानक हॉस्पिटल चलने को क्यों कह रही हैं? वहीं आस्था, वंशिका और राधिका तीनों की आंखों में भी यही सवाल था। तब नानी माँ ने सबको शांत करते हुए कहा, इस वक्त हमारा किसी भी सवाल का जवाब देने का इरादा नहीं है, हमने कहा ना अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल चलो, तो मतलब चलो। ये बोलकर नानी माँ तुरंत बाहर की ओर भागी और आकाश को आवाज़ देने लगी, आकाश बेटा, आकाश बेटा। आकाश जो अभी थोड़ी देर पहले ही सबके साथ हॉल में बैठा था और सभी हल्के फुल्के माहौल में बैठे हुए थे, जैसे ही नानी माँ की घबराई हुई आवाज़ सबके कानों में पड़ी सभी एक साथ खड़े हो गए। आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और अरमान सब तेजी से दौड़कर ऊपर कमरा की ओर भागे। आकाश ने पहुंचते ही पूछा, क्या हुआ नानी माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं, सब ठीक तो है ना? तब नानी माँ ने तुरंत कहा, बेटा इस वक्त सवाल जवाब का समय नहीं है, अभी और इसी वक्त जाओ और गाड़ी निकालो। ये सुनकर आकाश घबरा कर बोला, क्या हुआ, रश्मि तो ठीक तो है ना, आप अचानक ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो मैं उसे नारियल पानी पिलाकर आया हूँ। तब नानी माँ थोड़ा सख्त लहजे में बोली, तुम लोग ना जाने इतने सवाल क्यों करते हो, हमने क्या कहा, इस वक्त सवाल का समय नहीं है, गाड़ी निकालो और हॉस्पिटल चलो। नानी माँ की सख्त आवाज़ सुनकर आकाश तुरंत चुप हो गया। तभी सुमित बोला, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम रश्मि को लेकर आओ। ये सुनते ही आकाश तुरंत रश्मि के कमरे में गया। उधर अरमान ने गहरी नज़रों से नानी माँ को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और चुपचाप जाकर आस्था के पास खड़ा हो गया। तभी आकाश ने आगे बढ़कर रश्मि को अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से नीचे लेकर आ गया। वहीं अभिमान और दादाजी तुरंत जाकर खड़े हो गए थे और नानी माँ की ओर देखकर बोला, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? तब नानी माँ ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। दादाजी भी अब थोड़ा सा शांत हो गए थे। दादाजी और अभिमन्यु भी सबके साथ जाना चाहते थे लेकिन आस्था ने उन्हें रोकते हुए बोला था, नहीं नहीं दादाजी, अगर सबके सब एक साथ इस तरह से हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ मामा जी को कौन संभालेगा? नहीं नहीं दादाजी प्लीज़, आपकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहीं रहिए दादाजी मामा जी के साथ, और पिताजी आप भी प्लीज़ यहीं रुकिए। आस्था की बात सुनकर कहीं ना कहीं दादाजी और अभिमान जी वहीं रुक गए थे और बाकी सब जल्दी जल्दी उसे लेकर अस्पताल की ओर निकल गए। सभी अलग अलग गाड़ियों से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। इस वक्त घर पर केवल प्रियंका और उसके माता पिता ही मौजूद थे। जैसे ही सभी लोग वहां से निकले कहीं ना कहीं सम्राट के आदमी जो सब्जी वाले, मोची और अलग अलग भेष में वहां आसपास मौजूद थे, उन्होंने तुरंत ये खबर सम्राट तक पहुंचा दी कि सिंघानिया मेंशन के सभी लोग इस वक्त घर पर नहीं हैं और लगभग सभी लोग एक साथ अलग गाड़ियों से कहीं गए हैं। ये खबर सुनते ही सम्राट का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो मन ही मन बोला, आखिरकार अरमान सिंघानिया इस तरह कहाँ जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने कल रात आस्था और अरमान को एक साथ देखा था उसके दिल की हालत खराब हो चुकी थी। वो दोनों को एक दूसरे के करीब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर गुस्सा और नफरत की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि सिंघानिया मेंशन के सभी लोग कहीं बाहर गए हैं, वो हैरान हो गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया, पता लगाओ आखिरकार ये लोग कहाँ गए हैं। और कुछ ही देर में रश्मि को बड़े अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। आखिर क्या हुआ है रश्मि को, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM।